ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है 18वीं लोकसभा के लिए नई सरकार के गठन पर विशेष कार्यक्रम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का गठन हो चुका है। प्रधानमंत्री सहित 71 मंत्रियों के कैबिनेट संघ ने बीते रविवार को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की। कैबिनेट में केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और विभिन्न विभागों के स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों ने आज से औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। आम चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को पूर्ण बहुमत मिला। 4 जून को चुनाव के नतीजे आए। बीते बुधवार यानी 5 जून से ही सरकार गठन की गतिविधियां तेज हो गई थी। एनडीए नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार का गठन किया गया है। गुरुवार को चुनाव आयोग ने नवनिर्वाचित सांसदों की सूची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। श्रोताओं की जानकारी के लिए हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि निर्वाचन आयोग की राष्ट्रपति को सूची सौंपने के बाद नई लोकसभा की पहली औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। स्वतंत्र भारत में आयोजित पहले चुनाव से लेकर अब तक 17 लोकसभा का गठन हो चुका है। इस बार 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। शुक्रवार सुबह संसद भवन में एनडीए के संसदीय दल की बैठक समाप्त हो गई। संसदीय दल के नेता के रूप में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव बैठक में रखा गया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव पेश किया। एनडीए की इस बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत जेडीएस के कुमार स्वामी, एलजेपी रामविलास पासवान के चिराग पासवान, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और अपना दल की अनुप्रिया पटेल जैसे घटक दलों के नेताओं ने एनडीए संसदीय दल के पद पर नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया। भाजपा और एनडीए संसदीय दल के विधिवत नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बनाने का दावा पेश हुआ और राष्ट्रपति भवन में एनडीए के घटक दल और भाजपा सरकार पहुंचे। शपथ ग्रहण करने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। रविवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी और नई मंत्रिपरिषद के 71 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
इस समारोह में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई। इनमें वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, डॉ एस जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण और जगत प्रकाश नड्डा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।
मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
कैबिनेट में 7 महिला मंत्रियों सहित 33 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करता रहेगा। यहां हम प्रधानमंत्री के एक सोशल मीडिया पोस्ट का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आज शाम हुए समारोह में मैंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं और मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एनडीए सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, और उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रियों की इस टीम में युवा जोश और अनुभव का अद्भुत संगम है। हम सभी देशवासियों का जीवन बेहतर बनाने में कोई कोर कसर नहीं बाकी रखेंगे। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मैं शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने दुनिया भर के गणमान्य अतिथियों का भी हृदय से आभारी हूँ। विश्व बंधु के रूप में भारत सदैव अपने निकट साझेदारों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोस के देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइजूब, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शामिल हुए। मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के नेताओं के साथ उनके मंत्री भी अतिथियों के रूप में समारोह में शामिल हुए थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में अतिथि नेताओं से मुलाकात की। नेताओं ने उन्हें लगातार तीसरे ऐतिहासिक कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाइयां दी। इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए उनका धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने पड़ोसी प्रथम और नीति समुद्री क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सामने रखा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि अपने तीसरे कार्यकाल में भारत इन देशों के साथ घनिष्ठ साझेदारी और क्षेत्रों में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इस संदर्भ में क्षेत्र में लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध और संपर्क का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ाना जारी रखेगा। नेताओं ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित भोज में भी भाग लिया। राष्ट्रपति ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की लोकतांत्रिक गतिविधि ने न केवल अपने लोगों के लिए गौरव का क्षण रखा है, बल्कि विश्व भर के लाखों लोगों के लिए ये प्रेरणा का विषय है। कल 18वीं लोकसभा के लिए केंद्रीय कैबिनेट की पहली अहम बैठक हुई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इस एनडीए सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार कार्यभार संभाला। राष्ट्रपति भवन की ओर से कल जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में नई कैबिनेट के बारे में सूचना प्रकाशित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के नेतृत्व करने के साथ साथ कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय जैसे अहम विभाग देख रहे हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग जैसे अहम कार्य भी प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। साथ ही सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और वो सभी अन्य विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री के पास है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के रूप में एक बार फिर से चुने गए हैं। नितिन गडकरी सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का उत्तरदायित्व केंद्रीय मंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार संभाल रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय आवंटित किया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। निर्मला सीतारमण को केंद्रीय मंत्री के तौर पर वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय आवंटित किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को विदेश मंत्रालय का प्रभार एक बार फिर से दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के साथ साथ इस बार सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी आवंटित किया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आवास और शहरी विकास मंत्री के साथ साथ ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री और अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया है। लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को जहाजरानी मंत्रालय का उत्तरदायित्व दिया गया है। जदयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को पंचायती राज मंत्री के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मंत्रालय और नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। इस बार गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय देख रहे हैं, जबकि फिर से भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय आवंटित किया गया है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रभार एक बार फिर से दिया गया है और मनसुख मांडविया नए खेल मंत्री बने हैं। डॉक्टर एल मुरुगन एक बार फिर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने कानून और न्याय मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का कार्यभार संभाला है। कल प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभालते हुए पीएमओ के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमेशा ही प्रधानमंत्री कार्यालय उनकी सेवा के केंद्र में लोगों के पीएमओ के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता रहा है। पिछले 10 वर्षों में देश ने जो हासिल किया है उससे अधिक हासिल करना है और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।
10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है, और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया, वो वक्त चला गया दोस्तों। इससे आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग उनकी टीम से जुड़े हुए हैं उनके पास समय की कोई कमी नहीं है, सोचने की कोई सीमा नहीं है और प्रयास के लिए कोई निर्धारित मानक नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरे देश को इस टीम पर भरोसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर मुहर लगाते हैं। उन्होंने अपनी टीम को हमेशा नए विचार विकसित करने के लिए कहा।
इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ।
अब नई सरकार गठित हो चुकी है और नई कैबिनेट ने भी नीतियों और योजनाओं के संबंध में निर्णय लेना शुरू कर दिया है। पहला निर्णय किसानों और देश की आम जनता के लिए लिया गया। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त भी कल जारी कर दी गई। ये किश्त 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का पहला निर्णय किसानों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए और प्रतिबद्ध रहेगी। सरकार आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए, घरों के निर्माण के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करेगी। कल नवगठित एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस संबंध में एक अहम निर्णय लिया गया। अब जबकि 18वीं लोकसभा गठित हो चुकी है, कैबिनेट काम करना शुरू कर चुकी है, तो आने वाले समय में इसी तरह से देश के विकास के लिए अग्रसर ये सरकार नई नीतियां और योजनाएं लाती रहेगी और देश के विकास में ऐसी नई नीतियां और योजनाएं अपेक्षित हैं।
अभी आप सुन रहे थे 18वीं लोकसभा के लिए नई सरकार के गठन पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।